बचपन से ही धार्मिक शिक्षा हम सभी प्राप्त करते आ रहे हैं। धार्मिक शिक्षा में हमने बचपन में ही नमोकार सूत्र, सामायिक सूत्र, प्रतिक्रमण आवश्यक सूत्र, 25 बोल, 67 बोल, 5 समिति, 3 गुप्ती का थोकड़ा, कर्म प्रकृति का थोकड़ा, नव तत्व का थोकड़ा, किसी ने जीव धड़ा, लघु दंडक, महादंडक, ये सब कुछ सीखा होगा। सीखा, इन सब को सीखते समय कई बार मन में सवाल तो उठे होंगे कि उन ज्ञानियों ने इतनी इतनी बातें क्यों बताई, एक ही चीज को समझाने के इतने सारे एक तो आयाम, और फिर इतनी सारी बातों को जानने से हमें क्या होगा। हमारा डायरेक्ट कनेक्शन क्या है इन सब बातों से? तो देखो, इस जैन विद्या को हम कई आयामों में समझेंगे। जैन विद्या एक तो है खुद को जानने के लिए आत्मवाद का ज्ञान देती हुई, आत्मवाद का ज्ञान देती है जैन विद्या। पहला चैप्टर है खुद को जानना। दूसरा जैन विद्या ज्ञान देती है कर्मवाद का, कर्मों को जानना। क्योंकि जैसे ही खुद को जानने का सवाल उठेगा वैसे ही बहुत सारे सवाल उठेंगे कि मुझ में इतने रूप क्यों आते हैं, हर पल मेरे रूप क्यों बदल जाते हैं, मेरी अवस्थाएं और व्यवस्थाएं दोनों ही बदलती है। अवस्था कहते हैं अंदर की स्थिति को, और व्यवस्था कहते हैं बाहर की स्थिति को। तो कई बार सवाल उठता है कि कौन बदलता है इन सबको। कुछ चीजें मेरी सोच के अनुरूप होती है, तो बहुत सी चीजें ऐसी भी तो है जो मैं नहीं सोचता हूं तब भी होती है। तो वो क्या है, कौन है परिवर्तन लाने वाला? तो शायद दुनिया के दूसरे धर्म बताते कि वो ईश्वर है। और दूसरे धर्म ये भी शिक्षा देते कि जाखी विधि रखिए राम, ताही विधि रहिए। जिस विधि से राम रखे उस विधि से रह लो। कहते सुख दुख जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये सब कुछ विधि के हाथ में है कि कब सुख आना, कब दुख आना, कब जीवन आना, कब मरण आना, कब यश आना, कब अपयश आना। दूसरे धर्मों में भी इनका जवाब दिया गया, पर वहां विधि और विधाता का नाम लिया गया, और ये कहा गया कि सब विधाता की विधि है, हम सब तो उसके हाथ के कठपुतले हैं, इसलिए हमें जैसा चलाएगा वो हम वैसा चलेंगे, उसकी इच्छा। देव इच्छा बली असी, देवता की इच्छा ही बलवान है। लेकिन जैन दर्शन इससे कुछ डिफरेंट बात कहता है। जैन दर्शन कहता है कि तुम्हारी भीतरी अवस्था और बाहर की व्यवस्था, इन दोनों का कारक दो प्रकार का है, दो है कारण। अगर आप कह दो कि एकमात्र मैं ही कारण हूं तो ऐसा भी नहीं है, और अगर आप कह दो एकमात्र पर ही कारण है तो ऐसा भी नहीं है। तो जैन दर्शन कहते हैं कि दो है कारक, एक है आप जिसका नाम दिया उपादान, आपके भीतर की भावना, आपके भीतर की ग्रहण करने की क्षमता। उपादान शब्द है, उप यानी समीप से, आदान यानी ग्रहण करना लेना। शब्द हमने सुना होगा आदान प्रदान, लेना देना, है ना? तो आदान यानी ग्रहण करने की क्षमता, उपादान समीपता से, भीतर से, भीतरी अवस्था उपादान है। भीतर से हमने जो भाव किया वह हमारा उपादान है। अब सबके भाव करने की क्षमताएं भी एक सरीख ही नहीं है। एक इंद्रिय जीव कितना भाव कर सकता है, उसकी बनस्पित बेइंद्रिय जीव कुछ ज्यादा भाव कर सकता है, और बेइंद्रिय जीव जितना भाव कर सकता है उसके बनस्पित तेइंद्रिय, उससे अधिक चतुरिंद्रिय, उससे अधिक असंगी पंचेंद्रिय, उससे अधिक संगी पंचेंद्रिय। संगी पंचेंद्रिय में भी वापस चारों गति आती है, नरक भी, तिर्यंच भी, मनुष्य भी और देव भी। और इन सब के अंदर भी सबसे ज्यादा भाव करने की क्षमता उसके पास है जिसका मन और मस्तिष्क डेवलप ज्यादा हो रहा है। चाहे वो तिर्यंच पंचेंद्र में और चाहे वो मनुष्य में, जिसका मनोमस्तिष्क डेवलप ज्यादा होगा उसके भाव करने की क्षमता ज्यादा होगी। आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि तिर्यंच पंचेंद्रियों में भी सबसे ज्यादा मस्तिष्क विकसित जो होता है वो होता है मछली का, मछली का। और मछली में भी कुछ एक प्रजातियां हैं जिनका मनुष्य के कुछ पॉइंट कम ही मस्तिष्क विकसित है, मतलब मनुष्य से कुछ पॉइंट कम ही है वो, बाकी उनका भी मस्तिष्क पूरा पूरा विकसित है। और आप देखो, इसीलिए जैन सूत्रों में भी हम इस बात को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैन सूत्रों में आता है कि सातवीं नरक तक जाता है तो जलचर प्राणी जा सकता है, जलचर प्राणी सातवीं नरक तक जा सकता है। और नरक में जाने का मतलब है कि उसके पास में उतनी ज्यादा मस्तिष्क की क्षमता विकसित होनी तो ही वो नरक तक जाएगा। हाँ, अगर ज्यादा मस्तिष्क विकसित नहीं है तो ज्यादा विचार और ज्यादा भाव नहीं करेगा, और ज्यादा विचार और ज्यादा भाव नहीं करेगा तो इतने घोर कर्मों का उपार्जन भी कैसे करेगा। क्यों, ऐसा क्यों कहा गया? हर चीज को कारण के साथ समझना, क्योंकि शरीर से कितने भी हिंसा करो सीमित है, शरीर के बहुत सीमाएं हैं। इसलिए देखो, एक शेर शरीर से हिंसा कर सकता है चौथी नरक तक, वो मर के जाए भी तो चौथी नरक तक ही जा सकेगा क्योंकि उसकी देहिक हिंसा है। लेकिन जो व्यक्ति इंसान बना है उसके पास में शरीर ही नहीं है, उसके पास वचन भी है, वो वचन से पूरे लोक को प्रभावित कर सकता है। वो ऐसा बोल सकता है कि दुनिया के लाखों लोग दुखी हो जाए, मृत्यु तुल्य कष्ट पाए अथवा मर भी जाए। वो आदेश दे सकता है और ऐसा उपदेश भी दे सकता है कि लाखों लोग तर भी जाए। लेकिन मस्तिष्क और मन, उसके करने की क्षमता असीम है। फिर जिसका जितना ज्यादा विकसित हुआ वो उतनी ज्यादा कर्म बांध भी सकता है और कर्म काट भी सकता है, अपनी भावधारा को बदल करके शुद्ध भी हो सकता है, बुद्ध भी हो सकता है, मुक्त भी हो सकता है। तो देखो, संगी पंचेंद्रिय और मनुष्य, कहते हैं चिंपांजी से मनुष्य के पास में केवल 0.2% डेवलप दिमाग है, केवल इतना सा फर्क से चिंपांजी से आदमी आदमी हो गया। मतलब हमारे पास कितना मस्तिष्क है, हम कितने कर्म बांध सकते हैं। तो सवाल ये था कि इंसान के भीतर की अवस्था, बाहर की व्यवस्था, इंसान के विविध रूप, ये सब जो सवाल उठते हैं कि सब ऐसा क्यों है, तो जैन दर्शन इसका दो कारण देता है। वो कहता है एक तो आपका उपादान और दूसरा कहता है आपका निमित्त। आपको निमित्त कैसा मिलेगा? उपादान के कारण से भी आपकी अवस्थाएं अलग होंगी और निमित्त के कारण से भी आपकी व्यवस्थाएं अलग होंगी। उपादान आंतरिक कारण को कहते हैं और निमित्त बाहरी कारण को कहते हैं। निमित्त यानी सहयोगी, निमित्त यानी जिस पर हम अपने भावों को प्रकट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, हम अपने भावों से जिसको प्रभावित करते हैं और फिर जिसके माध्यम से कार्य होते हैं, उसका नाम है निमित्त। अब दो शब्द समझने योग्य, कर्मवाद को समझने के लिए और आत्मवाद को समझने के लिए। अभी हम दो ही वाद की बात कर रहे हैं, जैन विद्या में चार वाद समझने योग्य होते हैं। पहला है आत्मवाद, दूसरा है कर्मवाद। ये जो कर्मवाद है, इसको समझने के लिए हमें दो शब्दों को समझना है। हमारे यहां विधाता की रचना, प्रकृति का खेल, नियंता का शासन, किसी भगवान की सत्ता ऐसे नहीं मानी गई कि वो कोई हम सबके कर्मों का फल देता है या हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखता है। जिसे कई धर्मों में माना गया, वो एक सुपर कंप्यूटर है जिससे हमारे सारे कंप्यूटर कनेक्ट है और वो जैसा चाहेगा, जैसा प्रोग्राम फीड करेगा, हम सब वैसे ही कार्य करेंगे। जैन दर्शन ऐसा नहीं कहता, पर जैन दर्शन और वैज्ञानिक बात कहता है। वो कहता है कि उपादान और निमित्त के कारण ये सारी घटनाएं घटती है, भीतरी जगत की भी और बाहरी जगत की भी। भीतरी अवस्थाओं में परिणमन और बाहरी व्यवस्थाओं में परिवर्तन, ये सब उपादान और निमित्त की वजह से आता है। अब हमें क्या समझना, पहले उपादान को या निमित्त को? हमें उपादान को पहले समझना होगा। अब देखो, उपादान क्या है? एक शब्द तो हमने अर्थ समझ लिया, उपादान यानी ग्रहण करने की क्षमता, ये तो अशाब्दिक अर्थ। इसके और अर्थ करें तो उपादान का मतलब होता है आंतरिक योग्यताएं, आत्मा की भाव क्षमता, आत्मा की बोध क्षमता। सबकी भाव क्षमताएं और सबकी बोध क्षमताएं एक सरीखी नहीं है, ये तो क्लियर ही हो गया। अब सवाल यह है कि हमारा उपादान यानी हमारी भाव क्षमता और बोध क्षमता कैसी है, कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे सम्यक रूप से उसको गतिमान किया जा सकता है। इस हेतु हमें ज्ञान की आवश्यकता है, बिना ज्ञान के हमें समझ नहीं आएगा। तो अनंत अनंत उपकार उन अरहंत परमात्मा का, ज्ञानी पुरुषों का, उन आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों का, जिन्होंने हमें खुद को जानने के लिए, खुद को समझने के लिए, बोध पाने के लिए ज्ञानमयी देशना दी। और वो देशना दी उन्होंने तो हमें समझ आया कि अच्छा, हम अपने उपादान को शुद्ध कैसे बनाएं। अब ग्रहण करने की क्षमता, सुबह से लेकर शाम तक शायद ही कोई ऐसा पल हो जबकि हमारे भीतर से भाव ना उठ रहा हो और हमारी पांचों इंद्रियां और मन कुछ न कुछ बोध रूप व्यापार न कर रही हो। शायद ही कोई ऐसा पल होगा, ख्याल में है कोई ऐसा पल जबकि हमारे भीतर में कोई भावों का उठना न हो और जब उस क्षण में हमारे भीतर से कोई बोध ग्रहण न हो रहा हो? ऐसा कोई भी पल नहीं है, हम सब ग्रहण कर रहे हैं। अब देखना यह है कि हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, किस रूप में ग्रहण किए हुए का परिणमन कर रहे हैं और हमारा बोध किन दिशाओं में रहता है। आंख खुली नींद में से, खुद की बात कर रहे हैं क्योंकि हम स्वाध्याय कर रहे हैं और ये स्वाध्याय शिविर है, तो सबसे पहले देखो जरा नींद में से आंख खुली, ध्यान किस पे गया, किसको ग्रहण किया, किसको विषय बनाया अपने बोध का, बोध का विषय क्या बना था, भाव क्या उठा था। पहली बात, नींद में से जाग आते ही कितने भी बजे जाग खुली हो, 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोगों को जाग आने के साथ ही ख्याल आता है कितनी बजी, पहला ख्याल आता है बजी कितनी, फिर घड़ी देखते हैं, अच्छा अभी 3:30 हुए, सोचते अभी सो जाओ, फिर बाद में जाग जाएंगे, अभी तो 7 बजे पहुंचना है शिविर में, तो अभी सो जाते हैं, 6 बजे जागेंगे तो भी पहुंच जाएंगे। आलस्य का भाव आया। अब हमने क्या ग्रहण किया है? आलस्य। हमने ही अपने भावों से आलस्य को चयन किया। किन्हीं लोगों ने सोचा आंख खुलने के साथ ही, जाग आने के साथ ही मेरे भीतर क्या भाव चल रहे हैं? मैं रात नींद में कहाँ था? शरीर तो बिस्तर पर था, पर मेरे भीतर क्या चल रहा था? कहाँ कहाँ मेरे चित्त भटक करके आए? किस किस के साथ मेरे चित्त संबंधित रहे? मैं किन महसूसियों में रहा? दुखद महसूसी में रहा या सुखद महसूसी में रहा? अगर मैं दुखद महसूसी में रहा तो कारण क्या? वो कौन सी बात है जो मेरे चित्त में खटक रही है? तो आपको ख्याल आएगा कि रात सोने से पहले आपने कुछ ऐसी बातें सुनी थी, देखी थी अथवा पढ़ी थी, या आपके घर में ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ था कि उससे आपके चित्त ने चिंताएं इकट्ठी की थी, और उन चिंताओं के साथ ही हम नींद में चले गए थे। तो जैसे ही जाग आए ना, तो सवाल करना कहाँ था, तो पता लगेगा कि अंतिम विचार जो था वही मेरा पहला विचार हुआ। अंतिम विचार में चिंता थी, प्रथम विचार में चिंता आ गई। अंतिम विचार में दुख था, प्रथम विचार में दुख आ गया। सोते वक्त जो अंतिम विचार था, जागते समय वो ही हमारा पहला विचार बन जाता है। ये प्रक्रिया समझ में आए? ये ठीक ऐसे ही होता है जैसे जब हम कैमरे से किसी रूप को कैद करते हैं, तो जैसे ही कैमरा क्लिक होता है, जो लास्ट पोज होता है वही उस कैमरे के अंदर कैप्चर हो जाता है। और अब जब कैमरे को खोलोगे तो वही नेगेटिव बन करके आपके सामने आएगा। ऐसे ही हमारा माइंड कैप्चर करता है, और अपने भीतर के उन विचार को पहचानना यह है अपने आप की खोज। खुद की खोज करो और पाओगे कि कितने बार पूरी रात नींद बेचैनी से निकली, दुख से निकली। चाहे हम नींद में ही थे, पता नहीं था, लेकिन अंदर में जो श्रृंखला चल रही थी, जो धारा बह रही थी, वो धारा दुख वाली थी, अथवा वो धारा परेशानी वाली थी, अथवा वो धारा कभी खुश थी, सुख में थी। केवल उस भीतर की भावधारा को पहचानना। अब भीतर की भावधारा को अगर जो जानने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसका नाम है स्वाध्याय। यही स्वाध्याय है कि हम अपने भीतर का अध्ययन कर रहे हैं कि सोया कैसे था और जागा कैसे हूं। अब इस क्षण में क्या करोगे? जैसे ही पता लगा, ओ रात भर तो मन बहुत भटका, न जाने किस किस को क्या क्या कह रहा था, सपनों में कहाँ चला गया था, अच्छा कल की बातों का प्रभाव था, कल सुना था ना कि फला आदमी मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा है, फला आदमी मेरे घर में नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, मेरे सगे संबंधी मुझे समझ नहीं रहे हैं, मुझसे नाराज रहते हैं, अथवा औपचारिक रिलेशन रखते हैं, ऊपरा ऊपरी व्यवहार करते हैं, अंदर से वो मेरे साथ खुश नहीं है। और ये सुनकर के मेरे भीतर से भी खुशी और प्रसन्नता खत्म हुई थी, मेरे भीतर भी उनके प्रति मोह टूटा था। मोह तो टूटा सो टूटा, अंदर ही अंदर उनके प्रति ऐसी शिकायतें भी इकट्ठी हो गई कि मैं इनका क्या नुकसान कर रहा हूँ, जो ये लोग मेरा को प्यार नहीं करते, मुझे समझते नहीं, मुझे सम्मानित नहीं करते। जो मन के अंदर वो तृष्णा पैदा हुई थी, वही तृष्णा का प्रभाव सुबह आँख खुलने के समय अपने चित्त में पहुंचा हुआ होगा। और जब चित्त में वो प्रभाव दिखलाई पड़े, अब वो प्रभाव दुखद हो सुखद हो कैसा भी हो, महसूसी दो ही तरह की होगी जनरली, या तो सुखद महसूसी होगी या दुखद महसूसी होगी। तब आंख खुलने के साथ ही उस महसूसी को पूरे को विद इन वन या टू मिनट हम पूरे की पूरी अवस्था को साक्षात कर रहे होंगे। उस पूरी अवस्था का जैसे ही साक्षात्कार होगा, ठीक उसी क्षण में अगर प्रतिक्रमण की समझ है, अगर अपाणम वो सिरामी की, निस्सी ही की, मिच्छा में दुकड़म की, खमत खामणा की समझ है, और नहीं भी समझ है तो इसी क्षण समझ लें कि जैसे ही अपने भीतर का वो बोध समझ आया, तुरंत भाव करना कि ये सारा दुख, ये सारी चिंताएं, ये सारी मेरी मानसिक कल्पनाएं, इसी क्षण विसर्जित हो, विसर्जित हो, विसर्जित हो। मैं अपने चित्त से इन सबको भुलाता हूं, विस्मृत करता हूं, और मैं एक ही बात ग्रहण करता हूं कि सृष्टि के सारे ही जीव मेरे सहयोगी है, और मैं सबके सहयोग से इस जीवन को जी पा रहा हूं। जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मैं उनका भी आभारी, जो मेरा विरोध कर रहे हैं मैं उनका भी आभारी हूं। जो मुझे प्यार कर रहे हैं, मेरी सुख सुविधा का ख्याल रख रहे हैं, मैं उनका भी आभारी हूं, और जो सतत मेरे को इग्नोर करते हैं, मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं मानते हैं, मुझे लेकर परेशान रहते हैं, मैं उनका भी आभारी हूं। क्योंकि जीव मात्र सब अच्छे हैं। मैं अपने चित्त को इसी क्षण प्रेम से भरता हूं। अब पहला ही क्षण आंख खुलने का क्षण, और हमने आंख खुलने के क्षण में अपने चित्त का प्रतिक्रमण किया। अपने मन का अवलोकन किया, और हम इस क्षण क्या भाव कर रहे हैं उस भाव के प्रति हम सजग हो गए। और जैसे हम अपने भाव के प्रति सजग होकर के अपने भावों से विभावों की विशुद्धि करते हैं, हमारा उपादान शुद्ध होता है। अन्यथा हम वही पुराने मन लेकर, पुरानी सोच, पुराने अनुभवों के कड़वे मीठे सारे अनुभवों के परिग्रह को साथ लेकर इस नए दिन में प्रवेश करते तो हमारा ये नया दिन भी पुराने जैसा ही बनता। आप तो बुजुर्ग हो, आपके मन में ऐसे सवाल कम आते हैं, लेकिन अक्सर युवाओं के मन में एक सवाल आता है कि जिंदगी में सब कुछ एक सरीखा होता रहता है, बोर हो जाते हैं। वो लोग कहते बड़े बोर हो गए, क्या वही सुबह उठना, सेम काम करना, फिर वही दिन भर की दौड़ भाग, रात होते होते थक जाना, फिर सो जाना, फिर सुबह उठना, फिर वही सड़कें और वही गाड़ियां। पहले जमाने में कहते थे कि वही घोड़े और वही मैदान, अब कहते हम वही सड़कें और वही गाड़ियां और वही दिमागी लड़ाइयां, सब सेम चालू रहता है। पहले घर में लड़ाई, फिर ऑफिस में जाए तो वहां तेरी मेरी ऊट पटांग, और जब रात तक घर पहुंचो तब तक वापस बच्चों की ऊट पटांग की बातें सुनो, तो हमारा सब जिंदगी क्या हो गई है। अब हम उनको कहते भी हैं कि जिंदगी का हर पल नया है, इसको नए अंदाज से जियो, पर यह बात समझ नहीं आती कि कैसे नए अंदाज से जिए। सुनने में तो बात बड़ी अच्छी लगी, कहे जाने पर कहने वाले को भी शायद अच्छी लगी, लेकिन अनुभव में कैसे आए, उसकी प्रैक्टिस करें हम। और प्रैक्टिस करें तो बच्चे हो या बड़े या बूढ़े, हर आदमी नए दिन में नए तरीके से प्रवेश कर सकता है। तो प्रैक्टिस का पहला सूत्र था कि जैसे ही जाग आए अपने मन का निरीक्षण करना, मन की प्रतिलेखना करना। यह है मन की प्रतिलेखना। जैसे साधु लोगों को आपने देखा होगा कि वो सुबह उठने पर अपने वस्त्रों की प्रतिलेखना करते हैं, अपने भंड उपकरणों की प्रतिलेखना करते हैं, अपने शरीर की प्रतिलेखना करते हैं, लेकिन उन सबसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने मन की, विचारों की, भावनाओं की, संवेदनाओं की प्रतिलेखना करना। और तब प्रतिलेखना शब्द का मतलब समझ ले जरा, क्योंकि कई लोगों को समझ ही नहीं आएगा ये प्रतिलेखना क्या है। जिसने जैन वोकेबुलरी पढ़ी उसको समझ आएगा, जिसने ये वोकेबुलरी नहीं पढ़ी उसे समझ ही नहीं आएगा। लेखना कहते हैं देखने को, टू वॉच, टू लुक, और प्रतिलेखना कहते हैं कि जो बीत चुका, जो हो चुका, चाहे वो संग्रहित हो चुका दिमाग में, चाहे वो संग्रहित हो गए आपके सामान में, उन सब के प्रति पुनः दृष्टिपात करना, पुनः नजर डालना। और प्रति यानी उसके प्रति देखना, लेखना। किसके प्रति लेखना? जो हुआ है, जो आपके पास कलेक्शन है उसी को तो प्रति लेखना करोगे। जो कलेक्शन ही नहीं उसका कैसे करोगे? अब कलेक्शन अंदर भी है, कलेक्शन बाहर भी है। तो अंदर वाले चीजों का कलेक्शन का प्रतिलेखन करना मत भूलो। बाहर की चीजों का तो कई साधु संत कर लेते हैं, पर अंदर की चीजों का करते ही नहीं। तो अंदर की चीजों का प्रतिलेखना करने से क्या होगा? इंसान को समझ आएगा कि मेरे भीतर कौन सी तरह की भावनाएं हैं, किस प्रकृति के विचार है। जिस प्रकृति के विचार है वही हमारे कर्म है, वही हमारे कर्म कर्ण है। जिस प्रकृति के विचार है, जिस प्रकृति की भावनाएं हैं, बस वही हमारी भविष्य रचना है, वही हमारा आज का दिन है पूरा। तो पहला चैप्टर, स्वाध्याय का पहला चैप्टर, उपादान की शुद्धि करने का अभ्यास, और उपादान की शुद्धि करने का अभ्यास के तौर पर जाग आने के साथ ही अपने चित्त का निरीक्षण हो, प्रतिलेखन हो। और प्रतिलेखन होकर के जैसे ही पता लगा कि मेरा पास्ट इकट्ठा है, इसमें सबके पास है या नहीं पास्ट? अब आप देखो, ये पास्ट इकट्ठा होने की वजह से हर दिन पुराना हो रहा है। हर दिन पुराना हो रहा है, और तब हम लोग ओल्ड हो गए। बूढ़े हो गए हम लोग, क्योंकि दिन भर पुराना इकट्ठा रहता है। और बड़ी मजे की बात यह कि उस पुराने को कोई पकड़ाता नहीं है, हमें, हम खुद पकड़ रहे होते हैं। और कोई पुराना घटित हो चुकी घटना, जो भूत है, जो घट चुका है, वो दुख देने आता नहीं है हमको। जो मर गया वो भी दुख देने नहीं आएगा, जो जीवन से बिछुड़ गया, जिसका रास्ता अलग बन गया, वो भी दुख देने नहीं आएगा। जो बेटी ससुराल चली गई वो भी दुख देने नहीं आएगी। जो बेटा फॉरेन पढ़ने चला गया या शादी करके सेटल हो गया, जॉब बिजनेस फॉरेन कर रहा है, वो भी दुख देने नहीं आएगा। लेकिन फिर भी रोज हमें दुख मिलता है। अब रोज हमें जो दुख मिल रहा है वो कौन दे रहा है? इसमें भरा हुआ भूत। यह है हमारे उपादान की अशुद्धि। अब उपादान का मतलब है ग्रहण करना, और ग्रहण करने की अशुद्धि हमारी कहां से चालू हो रही है? समझ की अशुद्धि की वजह से। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो तो इस जीवन में यथार्थ में कोई दुख है क्या? यथार्थ यानी प्रैक्टिकल टर्म में, इनफैक्ट यथार्थ को इंग्लिश में कहेंगे इनफैक्ट। तो इनफैक्ट कोई दुख है क्या? आप देखो इनफैक्ट कोई दुख नहीं है, दुख सारा की सारा ये पास्ट कलेक्शन और हमारा उपादान, हमारी ग्रहण करने की क्षमता लगातार उस पास्ट से संपर्क साध रही है जो कि बीत चुका। अब इस बीत चुके की पकड़ को छोड़ने का पुरुषार्थ, बीत चुके की पकड़ के रखने की आदत को छोड़ने का पुरुषार्थ, ये हमारे स्वाध्याय की तपस्या है। इसलिए स्वाध्याय को तप कहा। तप के 12 भेदों में स्वाध्याय एक भेद है। अब स्वाध्याय तप कब होता है? आप देखो ऐसे किताब पढ़ने में कोई बड़ी तपस्या नहीं है, है ना? और मैं नहीं समझती जिसकी बुद्धि बहुत प्रखर है उनको कुछ ज्यादा रटने में भी जोर पड़ता हो, वो रटे भी मार लेंगे चीजों को, बाय हार्ट कहते हैं, बाय हार्ट कर लेंगे। नहीं, शब्द बड़ा प्यारा दिया बाय हार्ट, नहीं ऐसा लगता है खाली इन मेमोरी होता है। बाय हार्ट का मतलब तो कुछ और हो गया, बाय हार्ट का मतलब है दिल से समझना, दिल से स्वीकार करना। अब अभी जो बात सुन रहे हो वो क्या होगी? बाय हार्ट, दिमाग से कि दिल से? अगर दिल से समझ आई है तो अब शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब आपकी नींद में से आंख खुले और आपको पहला विचार इस सुने हुए प्रवचन का ना आए, इस सुने हुए प्रवचन का आपको पहला विचार आएगा, आज के प्रवचन का, इस क्षण के प्रवचन का, कि जब आंख खुलेगी आप जाओगे अपने पास्ट में और खोजोगे अब आगे क्या करना। ये तो हुआ हमें अपने अतीत को जानना, जानने के साथ ही प्रतिलेखना करने के साथ ही जानना होगा और जानने के साथ ही हमें उसको विसर्जित करना आना होगा। अब विसर्जित करते समय दो बातों का ध्यान रखना, क्योंकि कुछ तो चीजें हैं जो दुख रूप में इकट्ठी की गई है, जो राग मोह के रूप में इकट्ठी की गई है, उनको तो अपने चित्त से भुलाना है और रोज कहना है, कल के पूरे दिन को याद इसी क्षण आएगा आंख खुलने के साथ ही, और आंख खुलने के साथ ही कहना, मैं अपने राग के भावों को और अपने द्वेष के भावों को, मैं अपने मन में बनी हुई अपेक्षाओं को और अपेक्षा के टूटने की वजह से बनी हुई शिकायतों को, मैं अपने मन में बनी हुई चाहतों को और चाहते पूरी ना होने हो पाने की वजह से पैदा हुए तनावों को, दोनों को ही मैं अपने भीतर से विसर्जित करता हूं, विसर्जित करता हूं, विसर्जित करता हूं। और फील करना कि जैसे डस्टर से कोई बोर्ड कैसे साफ करता है टीचर, ऐसे हमने अपने भीतर विसर्जित करने के साथ ही एक डस्टर का इस्तेमाल किया है और हमारे चित्त के बोर्ड को हमने साफ कर दिया, चित्त के चित्रपट पर जो कुछ भी पेंट किया हुआ था उस सारे पेंट को हमने अभी पोछा लगा दिया है, अभी रब कर दिया है। तो पोछा लगाने पर जैसे वो चित्रपट कैसा क्लियर दिखाई देता है, ऐसे अपने भीतर का चित्त क्लियर होना तो उपादान की शुद्धि होगी। अब अगला पॉइंट, खाली कुछ भी नहीं रहता यहां पर। सेकंड चैप्टर है कि खाली कुछ भी नहीं रहता यहां पर। आपने जैसे ही चित्त को पोछा लगाया, पुराना विचार हटा दिया, चित्त नया विचार तो लेगा ही लेगा। कोई भी चीज खाली नहीं रहती है, वैक्यूम में हवा पहुंच जाएगी। तो करना क्या? तो सेकंड विचार आए नमोकार मंत्र। अब आपको कुछ तो भरना है अंदर ना, क्या भरना है? और कुछ तो आता ही नहीं, हो सकता है कईयों को शास्त्र नहीं याद है, कईयों को प्रार्थना ही नहीं याद है, कोई को भजन के याद नहीं है, कई को भक्तामर याद नहीं है, कईयों को कुछ भी याद नहीं आता। कोई बात नहीं, कुछ नहीं आता, दो शब्द हम सबको आते हैं, दो शब्द हम सबको आते हुए नमस्कार करना और धन्यवाद करना, दो शब्द सबको आते। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो ये दो शब्द ना सीख सकता हो। तो चित्त खाली तो रहेगा नहीं, चित्त में डालना क्या है? तो हमें डालना है परमात्मा को प्रणाम, खाली चित्त से परमात्मा को प्रणाम करना। इसलिए प्रणाम भी बाद में है, पहले है प्रतिलेखन प्रमार्जन, पहले है अपने अतीत के चित्तों की शुद्धि, निद्रा दोष मुक्ति। जब निद्रा दोष मुक्ति हो जाएगी, नींद में लगे हुए दोषों की, नींद में इकट्ठे किए चित्तों की, कल तक सारा इकट्ठा किया चित्त की शुद्धि कर लेंगे, तब हम करेंगे नमोकार। अब नमोकार कैसे करेंगे? देखो, दुनिया में लाखों लोग हैं जिनको नमोकार मंत्र आता है, पर उससे कई लाखों गुना ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको नमोकार मंत्र नहीं आता है। हम दोनों के लिए बात कर रहे हैं, जिनको आता है और जिनको नहीं आता, वे सब एक काम कर सकते हैं कि आंख खुलते ही इस पूरे जीवन को प्रणाम करें। आज का दिन मिला इस बात के लिए धन्यवाद करें, परमात्मा को प्रणाम करें, और परमात्मा को प्रणाम करते हुए एक भाव भरे, हे परमात्मा, तुम मेरे भीतर बाहर सर्वत्र हो। इस लोक में ऐसा एक भी अंश मात्र भी स्थान नहीं है जहां पर कि आप मौजूद ना हो, क्योंकि आपका ज्ञान अनंत, आपका दर्शन अनंत, और अनंत में सब कुछ समा गया। तो आप हम सबके भीतर हो, आप हम सबके चारों ओर हो, आपको प्रणाम, आपको सविनय प्रणाम। और मैं भाव करता हूं कि जैसे आप असीम हो, विराट हो, ऐसे ही मैं भी अपनी सारी सीमाओं से मुक्त हूं और आप ही की तरह असीम और विराट हूं। मेरा इस खोपड़ी का, इस ईगो का, इस मैंपने का समर्पण विराट को, संपूर्ण को, जो सीमा मुक्त हो चुके उन सबको, संपूर्ण ब्रह्मांड को मैं अपना मैंपना छोड़ते हुए अपने आप को पूर्ण में समाहित करती हूं। उस पूर्ण को कोई ब्रह्मा विष्णु महेश कहता है, कोई अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्य कहता है, कोई राम कृष्ण कहता है, कोई गॉड हालेलुया अल्लाह अरहा कहता है। आपका कोई भी नाम क्यों ना हो, आप तो समस्त नाम और रूप से परे हो, आपके चरणों में मेरा समर्पण, और भाव मुद्रा में, समर्पण की भाव मुद्रा में, नमस्कार मुद्रा में एक इंसान कम से कम 7 मिनट तक बैठा रहे, बस वो 7 मिनट में उसका शरीर झुका हुआ रहे, हाथ जुड़े हुए रहे, और हो सके तो इस मस्तक को जमीन पे लगा दे। बेड पे बैठा हो तो बेड पे ही झुक जाए, जमीन पे बैठा हो तो जमीन पे झुक जाए, और मस्तक को जमीन पे लगाकर अपने इस दिमाग की छोटी छोटी सारी सोच विचार, अहंकार, लालच, इन सब को परमात्मा के चरणों में छोड़ दे। अब देखो, सारी चिंताएं छोड़ दी, अहम छोड़ दिया, खोपड़ी झुका दी यानी मस्तिष्क झुका दिया, और मस्तिष्क जो सारी सीमाओं के साथ है, उस सीमित मस्तिष्क को असीम के चरणों में समाहित कर दिया, तो हमारा उपादान शुद्ध हो जाएगा, हमारे भीतर की शूद्र पकड़ खत्म होगी, अहंकार की पकड़ खत्म होगी, और तभी वो विराट स्वरूप जो हमारा भी अपना स्वरूप है वह अनुभव होगा। तो नमन के साथ ही, झुकने के साथ ही पूरे लोक में हमारी चेतना फैल जाएगी, झुकने के साथ ही सीमाओं से हम मुक्त हो जाएंगे, झुकने के साथ ही जितनी गहरी भावना आएगी भगवान के गुणों के प्रति, अरहंत यानी आत्मा की योग्यताएं, सिद्ध यानी आत्मा का शुद्ध बुद्ध स्वरूप, और आचार्य उपाध्याय साधु यानी इस जीवन को ज्ञान देने वाला मार्ग निर्देशक गुरु, उन सब के चरणों में प्रणाम। उनका नाम कोई क्यों ना हो, किसी की जिंदगी के खेवनहार मार्गदर्शक गुरु का नाम कोई भी हो सकता है। उस गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए न तो आप गुरु को अपनी कल्पनाओं में सीमित मानना, न स्वयं को। बस एक ही बात ध्यान रखना कि अगर कल्पना भी उठे तो गुरु भी असीम दिखलाई पड़े और आप भी असीम। गुरु को भी कोई देह की सीमा में, नाम की सीमा में, उसके आचार की सीमा में, उसके व्यवहार की सीमा में मत देखना, और खुद को भी। वो एक समय तो कम से कम ऐसा हो जब हम सीमाओं से मुक्त, परिधि से मुक्त, धारणा से मुक्त, संस्कार से मुक्त, पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए प्रकाश की तरह अपने गुरु को सर्वत्र महसूस करें, और वह 5 मिनट की महसूसी में हमारी चेतना विराट होगी, फैल जाएगी और हमारे उपादान की शुद्धि हो जाएगी, और उसके बाद पूरी जगती में 6 ही काय के जीवों को, यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त जीवनधारियों को हमारी ओर से दुआ, आभार, धन्यवाद की भावना प्रेषित हो। फिर इसी महसूसी के साथ अपने हाथों को जमीन पर लगाएं और महसूस करें, हे धरती, तू उपकारी है, तेरे आधार से मेरा जीवन है। हे वनस्पति, तुम उपकारी हो, तुम्हारी छत्र छाया से हमारा जीवन है। हे पानी, तुम उपकारी हो, तुम्हारी कुर्बानी से ये जीवन सुरक्षित है। हे अग्नि, तुम उपकारी हो, तुम्हारे सहयोग से मेरे प्राण धारा सुरक्षित है। हे वायु, तुम उपकारी हो, तुम्हारे सहयोग से मैं इस संसार में जीवित हूं। और फिर भाव से भर के प्रार्थना होगी, पृथ्वी को धन्यवाद, पानी को धन्यवाद, अग्नि को धन्यवाद, वायु को धन्यवाद, हरितक को धन्यवाद, त्रस प्राणी को धन्यवाद, 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 सबका सहयोग मिला, आनंद का भोग मिला, दिल में उजास खिला, सुंदर सा आज मिला, दानी उत्साह के गुरुवर को धन्यवाद, 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 प्यारे माता पिता, प्यारी संतान हो, दिल में भाई सखा के बढ़ बढ़ के प्यार हो, सबके कल्याण के भावों को धन्यवाद, 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 अपने जीवन से संबंधित हर एक व्यक्ति को याद करो, चाहे वो माता पिता हो, अध्यापक हो, संतान हो, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, परिवार का हर एक व्यक्ति को अपने चित्त में लाकर सबके चरणों में प्रणाम करते हुए धन्यवाद दो उन्हें, संपूर्ण जगत को धन्यवाद दे करके फिर देखो अपने हृदय को प्रेम से भरो। महसूस करो कि हम सब प्रेममय हैं, आनंदमय हैं और हमारी दृष्टि सब में रहे हुए आत्मिक गुणों को देखती है। भावना एक ही रखो कि मुझसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति सुखी हो और सबका कल्याण हो। इस भावनाओं से अपने आप को 10 मिनट तक भावित करो। अब भावित करते हुए मिनट भूल जाओ, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जितनी भी देर उन भावनाओं में रहो। नमन और आभार का भाव सुबह सुबह जितनी देर तक आप उसमें डूब सकते हो डूबो। चित्त की शुद्धि प्रतिक्रमण कर लिया और उसके बाद नमन और आभार के भाव में हम डूबे। अब जब आँख खुल जाए सहजता से, तब अपने आवश्यक कर्तव्यों के लिए इस संसार में प्रवेश करो। लेकिन प्रवेश से पूर्व अपने आप को विराट बना करके फिर प्रवेश करो। अब देखो उपादान की शुद्धि हो गई, ग्रहण करने वाला चित्त पवित्र हो गया, ग्रहण करने वाला हृदय पवित्र हो गया, भीतर से उठ रही हर भावना पवित्र हो गई। अब आज के दिन में हमारे पास में जो अतीत में बंधे हुए कर्मों का संचय है, वो संचय निमित्तों को लाएगा। लेकिन किन निमित्तों को लाएगा इसका निर्धारण हम अपने उपादान की शुद्धि के द्वारा कर चुके हैं। यह है स्वाध्याय का चैप्टर। खुद को पवित्र कर लिया, उपादान को शुद्ध कर लिया, भावों को शुद्ध कर लिया, और जो भाव शुद्धि के बाद आप संसार में प्रवेश करते हो तो आपके पास ना पुराना चित्त है, ना पुरानी सोच है, ना पुरानी कोई शिकवा शिकायत है, और आपका हृदय प्रेम और आनंद से भरा हुआ है। अब जहां भी जाएगा वो अपने प्रेम और आनंद को लुटाएगा, जहां भी जाएगा वो अपने हृदय से दुआओं को लुटाएगा। इसको जो भी मिला करेगा वो उसको धन्यवाद देकर के ही, आवश्यक को ही ग्रहण किया करेगा, बाकी चीजों को छोड़ करके आगे बढ़ जाएगा। तब क्या होगा, ऑटोमेटिकली आज का पूरा दिन शुद्ध होता जाएगा। तो उपादान की शुद्धि से निमित्तों की शुद्धि स्वयमेव होगी। फिर भी कदाचित जिंदगी में कोई ऐसा अचानक प्रश्न खुल जाए जो हमारी तो वर्तमान की सोच में था ही नहीं, लेकिन कुछ कर्म व्यक्तिगत है तो कुछ कर्म सामूहिक भी तो है। अब आप बड़े आनंद के साथ हो, अपने ऑफिस में बैठे हो, लेकिन अचानक खबर आती है कि आपने अपना माल जहां डिस्पैच किया था, जिस कंपनी को भेजा था, उस कंपनी ने माल वापस रिजेक्ट कर दिया और आपको वापस भेज दिया है। अब क्या करोगे, ये तो सामने सामने हजारों का लाखों का नुकसान हो गया। अथवा खबर आई कि आपके किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई, अथवा खबर आई कि किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं आग लग गई, अचानक कुछ भी तो खबर आ सकती है। आप कहोगे मेरे भाव शुद्ध, मेरी सोच शुद्ध, मेरे कर्म शुद्ध, मेरा चित्त शुद्ध, फिर ये घटनाएं क्यों मेरी जिंदगी में। एक ही बात सोचना कि व्यक्तिगत कर्म शुद्ध हो गया ना, अब जो कर्म भोगना बचा है वो सामूहिक कर्म था। आज वर्तमान शुद्ध हो गया, लेकिन अतीत के संचय का कोई चैप्टर खुल के उसको भी खाली होना था। खैर आ तो गया, क्या करना है, दो काम करने हैं। पहला काम करना, जो आया उसकी बुराई मत करना, उसको स्वीकार कर लेना। जो भी आया उसकी बुराई मत करना, स्वीकार कर लेना। और फिर दूसरा उपाय करना कि स्वीकार तो कर लिया, अब इसका उपाय क्या करना है। स्वीकार तो हो गया, जो स्थिति आ गई सो स्वीकार है, इसका उपाय क्या करना है। अब आपका मन अगर शुद्ध है तो उपाय अंदर से प्रकट होगा कि उपाय क्या करना है। मन अशुद्ध है, चिंता से व्याप्त हो गया है, शोक से व्याप्त हो गया है, दुख से व्याप्त हो गया है, अब उपाय सूझेगा ही नहीं। अतः आप दूसरों से पूछने जाओगे क्या उपाय करें। दो बातें, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा सच्चा ज्ञानी, गुरु, परामर्शक, आपका मित्र, सलाहकार, सहयोगी हो जो कि सूझबूझ से निर्णय ले सकता हो, तब तो अगर आप उतावले भी हो गए, परेशान भी हो गए, तब भी आपका काम चल सकता है। लेकिन आपकी जिंदगी में ऐसा कोई है नहीं, और है तो भी आप उसकी सुनोगे इसकी गारंटी नहीं, उसकी मानोगे ऐसा समर्पण भाव नहीं, तो बजाय इसके कि तुम शोक में जाओ, तुम शांति से अपने अंतरात्मा से पूछो अब उपाय क्या करना। देखो दो बातें, कुछ लोग इस प्रकृति में जिनकी की प्रकृति समर्पण की है, जिनकी प्रकृति समर्पण की है उनको कोई संभाल भी लेगा, पर जिनकी प्रकृति समर्पण की नहीं, थोड़ा जिद्दी स्वभाव वाले लोग हैं, तो उनको थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। उनको दुखद हालातों में भी खुद को शांत रखने का अभ्यास थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी और से संभलाए संभलेंगे नहीं, तो उनको थोड़ी तपस्या और ध्यान की साधना ज्यादा करनी चाहिए। इसलिए देखो कई बार कुछ लोग हैं जो ज्यादा तपस्या और ध्यान नहीं करते, तो भी बड़ी सहजता से जिंदगी के बहुत सारे पड़ावों से आगे बढ़ जाते हैं, है ना। वो कहते हैं मुझसे भूखा नहीं रह जाता, मैं सेवा करके खुश होती हूं। कई लोग, भाई लोग भी मिलते हैं, कहते हैं भूखा नहीं रह सकते, लेकिन किसी की मदद करने में बड़ा आनंद आता है। वो दान कर सकते हैं, कोई सेवा कर सकते हैं, व्यावच कर सकते हैं, वात्सल्य भाव में ज्यादा रहते हैं, प्रेम भाव में, भक्ति भाव में ज्यादा रहते हैं, तो उनके लिए तपस्या का मार्ग हो जरूरी नहीं। पता, उनके स्वाध्याय से उनको समझ आएगा कि उनका रास्ता क्या है, कि बस वो गुरु की सेवा भक्ति समर्पणा में रहे और हर कार्य गुरु की आज्ञा से करता जाए, तो ऑटोमेटिकली उसको हर अशुभ कर्म के समय भी गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा ही और वो अपना रास्ता निकाल लेगा। लेकिन अब जो व्यक्ति थोड़े जिद्दी है, थोड़े अहंकारी है, उनको लगता है जो हूं सो मैं हूं, ऐसे व्यक्ति को तपस्या जरूर करनी चाहिए, और वो कर भी सकता है, क्योंकि जिद्दी आदमी तपस्या भी कर सकता है, ज्यादा लचीला आदमी से तपस्या भी मुश्किल होती है। और आपने देखा होगा आपके चारों ओर कई सारी बहनों को, भाइयों को, लोगों को, देखो कुछ की प्रकृति है ये लंबी तपस्याएं भी कर लेते हैं, और कुछ की प्रकृति है एक दो उपवास करते हैं और कहते बस बहुत है। मैं ये नहीं कह रही तपस्या बहुत श्रेष्ठ है या तपस्या गलत है, प्रकृति के अनुरूप हो तपस्या। सेवा भी एक तप ही है, व्यावच भी एक तप ही है, नहीं है तप? तप के 12 भेदों में व्यावच भी तो तप बताया है, तो व्यावच भी एक तप ही है, और अनशन उपवास आदि करना भी एक तप ही है। पर सबके लिए सब तप हो ऐसा नहीं है, जिसकी जैसी प्रकृति हो वो वैसा तप करे। तो बात यह है कि अगर तुम्हारे मन में ऐसा नहीं है कि तुम्हारा गुरु तुम्हें तार रहा है, तुम्हारा कोई सहयोगी है जो तुम्हें राह दिखाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे, तो प्लीज अपने आप को और ज्यादा योग्य बनाओ, फिर थोड़ा तप और करो, ध्यान और साधो, ताकि हर प्रतिकूल हालात को झेलने की क्षमताएं पहले से ही मौजूद हो। तपस्या क्या है, थोड़ा सा साइंस समझना कि प्रतिकूलता तो कर्मों के उदय से आती है जिंदगी में। यह जीवन का यथार्थ है कि प्रतिकूलताएं भी आती है, लेकिन दुख आता यह यथार्थ नहीं है, दुख तो मानसिक कल्पना है। प्रतिकूलता यथार्थ है क्योंकि संसार की बनावट ऐसी है कि जब एक आदमी कमा रहा होगा तो एक आदमी लॉस कर रहा होगा, एक आदमी का एक्सेस प्रॉफिट हो रहा है तो किसी ना किसी का तो लॉस भी तो हो रहा है। एक आदमी को प्रतियोगिता में फर्स्ट रैंक मिल रहा है तो इसका मतलब है ना कोई तो हार भी रहा है। अब कोई एक आदमी है जो जीवित है, तो इसका मतलब ही है कि उसके जीवन रहने के लिए असंख्य जीवाणुओं को मरना पड़ रहा है। इस फैक्ट को समझना कि लाइफ का सर्कल ही ऐसा है कि जीवन के साथ मरण जुड़ा है, जीत के साथ हार जुड़ा है और लाभ के साथ हानि जुड़ी है। आपको लाभ हो रहा है तो किसी को हानि हो रही है, आपको जीत मिल रही है तो किसी को हार मिल रही है, आपका जीवन है तो किसी का मरण है। ठीक है, इसका ऑपोजिट भी है, हम हार रहे हैं तो कोई और जीत रहा है, हम निंदा पा रहे हैं तो कोई और तारीफ पा रहा है, हम मर रहे हैं तो कोई और जी रहा है। ये सर्कल है। अब इस सर्कल में क्या था, ये झूले की तरह सर्कल है ना, गोल राउंड है, उत्सर्पिण और अपसर्पिण की तरह। तो कभी हमारी चीजें बढ़ रही होंगी, किसी की घट रही होंगी, कभी हमारी घट रही होंगी, किसी की बढ़ रही होंगी। तो इस प्रकृति के चक्र में जब कृष्ण पक्ष आएगा तो हमें लगेगा कि चांद नहीं दिखाई पड़ रहा, कोई सहयोगी नहीं दिखाई पड़ रहा, कोई साथ नहीं दिखाई पड़ रहा, हर आदमी चीजें छोड़ता जा रहा है, मुझे छोड़ता जा रहा है। तो समझना अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है। फिर लाइफ में शुक्ल पक्ष आएगा, ऑटोमेटिकली आपको लगेगा यार कमाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, थोड़ा एफर्ट कर रहा हूँ काम हो रहा है, थोड़ा काम किया लाभ मिल रहा है। अब आप बढ़ते बढ़ते पूर्णमासी तक पहुँच रहे होंगे, ठीक है ना। ये सबकी ज़िंदगी में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष चालू ही रहने वाला है। अब हमें स्वाध्याय से ये बात समझ में आ गई कि लाइफ का फैक्ट है। स्वाध्याय हमें तथ्यों की सूचनाएँ देता है, तथ्यात्मक ज्ञान देता है, फैक्चुअल नॉलेज। तो स्वाध्याय से हमें इस फैक्चुअल नॉलेज प्राप्त हुआ कि भाई जीवन का सर्कल ही ऐसा है कि हमेशा एक सरीखे दिन रहने वाले नहीं है। ये बात समझ आ गई। अब अपने आप से समझना मुझे क्या करना ऐसे टाइम में, जबकि प्रतिकूलताएं आएंगी, उन प्रतिकूलताओं को झेलने की क्षमता मुझमें कैसे विकसित हो। क्योंकि हम बात कर रहे हैं उपादान की शुद्धि पर, और उपादान का मतलब है ग्रहण करने की क्षमता शुद्ध हो, ठीक है। तो प्रतिकूलताओं को झेलने की क्षमता किसकी कितनी है, महावीर की कितनी थी, उतनी इंद्रवती गौतम की तो नहीं थी, ठीक है ना। तो झेलने की क्षमता सबकी अलग अलग है। अब हमें अपनी झेलने की क्षमता को बढ़ाना है, इसीलिए स्वाध्याय के द्वारा उपादान को शुद्ध करते हैं। स्वाध्याय के द्वारा ये पता लगता है कि मुझे कौन सा तप करना, जो तप करोगे वो आपके उपादान को शुद्ध करेगा। तो तपस्या क्यों होती है, उपाध्यान उपादान की शुद्धि के लिए, झेलने की क्षमता की शुद्धि हो जाए, झेलने की क्षमता बढ़ जाए। अब भक्ति वाले रोग हो, आप दिल से चलने वाले हो, भावना प्रधान हो, ज्योतिष की भाषा में कहते हैं कि लगन में चंद्रमा बैठा है, तो आप क्या करोगे ऐसे टाइम में। तो आपके लिए है अपने उपादान की शुद्धि के लिए सेवा करो, दान करो, छोटी छोटे मर्यादाएं करो, छोटे छोटे त्याग करो। क्योंकि बड़ा त्याग कर रहा हूं, इतनी क्षमता मुझमें नहीं है, तो छोटी छोटी मर्यादाएं, छोटा छोटा त्याग, छोटे छोटे डग भरो, ठीक है। छोटे छोटे डग भरते भरते क्या होगा, जो प्रतिकूलताएं आनी है उन प्रतिकूलताओं को हम पहले ही अपने मर्यादा के द्वारा, अपने त्याग के द्वारा, खुद ही अपने भीतर को खाली करते जा रहे, शुद्ध बनाते जा रहे हैं। तो अब प्रतिकूलता हमें परेशान नहीं करेगी। आप देखो, एक आदमी लखपति है, नुकसान करेगा तो लाखों का, करोड़पति है तो नुकसान करेगा तो करोड़ों का, अरबपति है तो नुकसान करेगा तो अरबों का करेगा, ठीक है। जिसका लेवल जितना बड़ा उतना ज़्यादा नुकसान करेगा। एक आदमी है करोड़पति, लेकिन अपने भीतर में अपने आप की जिंदगी को ऐसे जीता है जैसे कि वो हजारपति है, ठीक है। उसने पहले से ही अपने मन से करोड़ों की मर्यादा कर ली, मन से करोड़ों के साथ कनेक्शन ही नहीं रखा, ठीक है। अब ऐसे व्यक्ति को अगर कोई नुकसान भी करता है तो वो नुकसान उसको अफेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसने तो पहले से अपने आप को उन सबसे सीमित कर लिया था। तो तपस्या का राज क्या है कि तुम्हारे पास तो छह खंड का राज है, लेकिन तुमने अपने आप को पहले ही सीमित कर लिया कि मैं तो चार जोड़ी कपड़ों में ही रहने वाला हूं। अब अगर शनि आता भी है, दुख आता भी है, कष्ट आता भी है, तो तुम्हारे साम्राज्य की कुछ दीवारों को खिसका सकता है, तुमको नहीं खिसका सकता, क्योंकि तुमने वहां तक अपना फैलाव रखा ही नहीं था। तुमने अपने आप को पहले ही सीमित कर लिया था। तो यह है सारा तपस्या का राज, मर्यादा का राज, कि अपने आप को पहले ही मर्यादित कर लो, सीमित कर लो। अब प्रतिकूलता ने आना भी है तो भैया हमारे तक प्रतिकूलता इसलिए नहीं पहुंच सकती क्योंकि हमने तो अपने आप को पहले उन सारी चीजों से खाली कर लिया था, अब हमें कष्ट कौन देगा। कहानी आती है एक पुराणों में, कहानी का सार बड़ा प्यारा है कि भगवान शिव जी गुफाओं में ध्यान लगाते हैं। पुराणों की कहानी है, हिंदू ग्रंथों की। तो भगवान शिव जी के पास में एक दिन शनि आया और बोला कि तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूं तुम्हारे ऊपर, और 7.5 वर्ष तक तो तुम्हारा पिंड छोड़ने वाला नहीं हूं, तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए। शिवजी ने सुना, शिवजी को क्या, जो खुद ही सन्यासी है, जो खुद ही वैरागी है, उसको क्या कष्ट दोगे। शिवजी ने सुना, कहा ठीक है ओके। शिवजी ने सोचा कि 7.5 साल तक ये क्या कष्ट देगा, मैं पहले ही गुफा में ध्यान लगा लू ना। गुफा में जाके बैठ गए, ध्यान में मग्न हो गए और उठे ही नहीं। 7.5 साल पूरे हो गए। जब 8 साल होने का है तो शनि वापस आया, बोला अब मेरी तो 7.5 साल पूरे हो गए, अब मैं जाता हूँ। शिव जी बोले तुम जैसे आए वैसे गए, मेरा क्या बिगाड़ लिया। तो शनि बोला इससे ज़्यादा क्या बिगाड़ता कि 8 साल तक तुम गुफा में बैठे हो, बाहर ही नहीं आए। अब देखो शनि क्या बिगाड़ता, वो आता कि तुम्हारे सुख तोड़ेगा, लेकिन शिव जी ने तो पहले ही अपने भीतर में त्याग पर स्वीकार कर लिया, पहले अपने जीवन में तप स्वीकार कर लिया। जब उसने तप ही स्वीकार कर लिया तब जिसको तोड़ना है उसको क्या तोड़ेगा, तोड़ने को कुछ मिलेगा ही नहीं ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रतिकूलता इस लाइफ का सर्कल है, कष्ट सबको आते हैं, लेकिन जिसने पहले ही अपने आप को त्याग में कर लिया वो कष्टों से प्रभावित नहीं होगा क्योंकि उसने उपादान की शुद्धि कर ली। अब उपादान की शुद्धि कर ली यानी भाव बदल दिए हैं, और भाव ही बदल दिए, अब निमित्त बदल भी जाए तो क्या, क्योंकि निमित्तों ने तो बदलना ही है। अब आप पर चीजें लागू नहीं होंगी तो किस पे लागू होंगी, आपकी व्यवस्थाओं पे। ध्यान दो, जब कष्ट आपको दुखी नहीं कर सकते तो वे किसी पे तो उतरेंगे, वे उतरेंगे आपके सामानों पर। अब सामान कुछ टूटेंगे, कुछ बिगड़ेंगे, अब आप कहोगे नई गाड़ी लाए खराब हो गई, नई बिल्डिंग बनाई आग लग गई, नया माल भरा लेकिन नुकसान पहुंच गया, उसी के दाम गिर गए। आपने कल रात पेट्रोल पंप में अपना, आपका पेट्रोल पंप है, कल रात आपने 1000 लीटर पेट्रोल इकट्ठा किया और अगले दिन पता लगता है 2 रुपये का दाम कम हो गया, अब आपको तो हो गया नुकसान। अब ऐसे में करना तो करना क्या, हाथ में नहीं ना चीजें, जो चीजें हाथ में नहीं है वो भी परेशानियां बनके तो आई जाती है। तो कर्मवाद को समझ रहे हैं हम और स्वाध्याय के माध्यम से समझ रहे हैं, उपादान की शुद्धि करने की हमारी पूरी साधना है। तो हमारी साधना क्या है कि भैया पेट्रोल के दाम गिरेंगे बढ़ेंगे, रुपए मेरी तिजोरी में कभी घटेंगे कभी बढ़ेंगे, पर मेरी जरूरत के रुपए कितने हैं। आपको समझ आ गया, मेरी जरूरत तो 1000 में भी पूरी हो जाती है, ठीक है, फर्क इतना ही पड़ा कि अगर ये पेट्रोल के दाम बढ़ते तो मेरी तिजोरी में 2 लाख की जगह 2 करोड़ पहुंचते, और अभी दाम गिर गए तो मेरी तिजोरी में 2 करोड़ की जगह 2 लाख पहुंचे। तो नुकसान और फायदा तिजोरी के स्थान का तो हुआ, पर मेरे मन के स्थान का कुछ नहीं हुआ, मेरे भीतर का कोई नुकसान नहीं कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो पहले से ही मर्यादित हूं, पहले से ही सीमित हूं, और मुझे पता है कि ये कृष्ण पक्ष है अभी, लेकिन शुक्ल पक्ष तो आना ही आना है। पखवाड़ा है, कुछ करो ना करो बदलेगा ही, हम ना भी कुछ करेंगे तो भी समय बदलेगा। जैसे लोग कहते हैं मैंने तो कुछ बुरा किया ही नहीं फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, बहुत लोगों का सवाल होता है जो मैंने कुछ बुरा किया ही नहीं तो मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। हम कहते हैं भाई तुम्हारे साथ इसलिए बुरा नहीं हुआ कि तुमने बुरा किया, ये तो पखवाड़ा है, उसको तो बदल नहीं था। हमने कुछ नहीं किया तो भी अमावस्या आई ना, और हमने कुछ नहीं किया तो भी पूर्णमासी आई, हमने कुछ नहीं किया तो भी समुद्र में ज्वार आया और तभी समुद्र में भाटा आया। तो कुछ कर्म है, सामूहिक कर्म है, प्राकृतिक घटनाएं हैं, वे घटेंगी। और प्राकृतिक घटनाएं जब घटेंगी तो एक आदमी की जिंदगी के चारों ओर उतार चढ़ाव सब कुछ चलेगा, लेकिन जिसने स्वाध्याय को समझ पूर्वक किया है, मतलब एक्चुअली स्वाध्याय का मतलब ही है होश पूर्वक खुद को अध्ययन किया है और तथ्यों को जान लिया है, फैक्ट को जान लिया है, तो जिसने फैक्ट को जान लिया है वो अपने आप को तप में ले आता है, मर्यादा में ले आता है। और तब क्या होता है, घटनाएं बाहरी घटती है, बाहरी खत्म हो जाती है, उसको अंदर में कोई प्रभाव नहीं पहुंचता। अब ये तप दो तरह का हम बता रहे थे, एक है भक्ति का तप, वह है वैयावच सेवा और छोटी छोटी मर्यादाएं, दसवां व्रत, ग्यारहवां व्रत, बारहवां व्रत, ये सब हर एक व्यक्ति के द्वारा साध्य है। हर व्यक्ति दसवें व्रत का अभ्यास करके, देशावगासिक का अभ्यास करके अपने दैनंदिन जरूरतों को अपने अंदर से कम कर सकता है, छोड़ सकता है, मर्यादित कर सकता है। बारहवें व्रत का अभ्यास करके हर एक व्यक्ति खुद को मिली हुई हर सुविधा सम्मान सामान में से कुछ कुछ लोगों को संविभागित कर सकता है, दे सकता है। देखो, पहले से खुद के लिए कम रखो और औरों को देने में उदार बन जाओ, अब आपको कष्ट कौन दे सकता है? कष्ट क्या आएगा? निमित्त के रूप में आएगा। निमित्त क्या आएगा? तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। और आप कहते हो भाई मुझे चाहिए ही नहीं तो मुझे नहीं मिलेगा, इस बात का दुख क्या? जिसको चाहिए उसको नहीं मिलेगा उसको दुख आएगा, जिसको चाहिए ही नहीं उसको नहीं मिलेगा तो भी उसको दुख कहां से आएगा, ठीक है ना? क्लियर? तो बताओ, समकीति कभी दुखी होगा? स्वाध्याय कभी दुखी होगा? तपस्वी कभी परेशान होगा? नहीं, तपस्वी परेशान होता ही नहीं, क्योंकि तुम निमित्तों को बदलोगे ना। मेरे तो भीतर बोध है, अब हमारी बोध की क्षमता क्या ग्रहण कर रही है? हमारी समझने की क्षमता दुख को ग्रहण कर रही है, हम संसारी है। हमारी समझने की क्षमता ज्ञान को, आनंद को ग्रहण कर रही है, हम साधक है, हम मुमुक्षु है, हम मुक्त हो रहे हैं, हमारा बोध हमें तार रहा है। इसीलिए जैन दर्शन कहता है कि कर्मवाद को समझो, कि कर्म कुछ नहीं तुम्हारी सोच है, और अगर स्वाध्याय के द्वारा अपनी भावनाओं को बदल दो तो कर्म किसको इफेक्ट डालेंगे? कर्म इफेक्ट डालेंगे दो रूप में, भीतर और बाहर। भीतर की अवस्था को हम स्वाध्याय से संभालते उपादान की शुद्धि करके, और बाहर की व्यवस्था निमित्त है। और जब हमारे भीतर में त्याग फलित हो जाएगा तो निमित्त हमें परेशान नहीं कर सके। अब जिनकी प्रकृति थोड़ी कड़ी है, थोड़ी जिद्दी है, वे थोड़ा ज्यादा अगर तप कर सकते हैं तो करें, और कर ही सकते हैं, और वे थोड़ा ज्यादा दान कर सकते हैं तो करें। और तब क्या होगा, उनका तप से उनके भीतर के कर्म कर्ण जो कल प्रतिक्रिया स्वरूप, कल कृष्ण पक्ष के समय के अनुरूप आपके अंदर आते और कष्ट देते, आपने पहले ही तपस्या से उन कर्मों को हटा दिया। दुख आता और झेलते, पर हमने तो स्वेच्छा से उपवास आदि करके अपने शरीर के कष्टों को झेल लिया। बीमारी आती और भोगते, लेकिन हमने तो पहले ही अपने भीतर में आयम्बिल आदि करके खान पान को शुद्ध कर लिया। अब बीमारी भी आती तो ये कहती खाना पीना छोड़ो, हमने पहले ही खाना पीना छोड़ दिया भैया, पहले ही वो खाना स्वीकार कर लिया जो खाना बीमार आदमी को दिया जाता है, वो तो मजबूरी में खाता है, और हमने तो स्वेच्छा से आयम्बिल किया, हमने तो स्वेच्छा से उपवास किया। तो क्यों ज्ञानी भगवंतों ने हमारे लिए ये सारे मार्ग दिए, क्यों आयम्बिल दिया, क्यों उपवास दिया? उन्होंने कहा कि अगर तुम बोध पूर्वक इन चीजों को ग्रहण कर लेते हो, इन चीजों को स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारा उपादान भी शुद्ध, निमित्त भी शुद्ध, उपादान भी शुद्ध और निमित्त भी शुद्ध। तो स्वाध्यायी से क्या होगा, उपादान की भी शुद्धि होगी और निमित्त की भी शुद्धि हो जाएगी, क्योंकि स्वाध्याय आपके बोध की क्षमता को सहज और शुद्ध बनाता है। इसीलिए जब समण महावीर से पूछा गया, सज्जा एनम भन्ते जीवे किम जनयई, तो कहा सज्जा एनम नाना वर्णिज्यम कमम खवई। स्वाध्याय से ज्ञान आवरणीय कर्म दूर हो जाएंगे, और ज्ञान आवरणीय कर्म दूर होगा तो मोहनीय कर्म भी दूर होगा, क्योंकि ज्ञान पे आवरण है तो मोह है, और ज्ञान का आवरण घटेगा तो मोह भी घटेगा। और मोह का मतलब है शोक, दुख और चाहतें, इच्छाएं। मोह के दो रूप है, इच्छाएं और इच्छाओं के अभाव होने पर दुख, इच्छा की पूर्ति ना हो तो दुख। इच्छा और दुख दोनों ही मोह का रूप है। अब उपादान की शुद्धि से हमारे भीतर की इच्छाएं और मोह और उससे पैदा होने वाला दुख सब हट जाए तो हमारा तप बड़ा सहजता से हो। हम छोटा तप करें, हम बड़ा तप करें, जो हमसे सहजता से हो जाए वो तप हमारे द्वारा हर दिन हो। फिर जो निमित्त मिला, लॉस हुआ, ये हुआ, स्वाध्याय करने वाले आदमी के अंदर धैर्य पैदा होगा। वो ये तथ्य को जानता है कि धीरज रखो, कुछ उठा पटक मत करो, कुछ आरंभ मत करो। ऐसा मत सोचो कि कोई तुम्हारे बारे में निंदा कर रहा है तो तुम भी जाकर के दूसरे की चुगली करो, भेद प्रकाशन करो, आरोप प्रत्यारोप करो। ऐसा मत करो कि कोई तुम्हारे बिजनेस में कोई चीट करके चला गया, कोई धोखा देके चला गया, कोई लॉस बन गया, गवर्नमेंट की वजह से, पार्टनर की वजह से, स्टाफ की वजह से कोई लॉस हो गया तो तुम कोर्ट केस करो, लड़ाई झगड़े करो, वाद विवाद फैलाओ, प्रपंच करो, किसी को हत्या करो, हिंसा करो, खून करो, चोरी करो, आगजनी करो, लूटमार करो, कुछ मत करो। क्यों क्यों कुछ ना करो? क्योंकि आप कहते हो कि मैं जानता हूँ कि मेरा चारों ओर का वातावरण मेरे भाव शक्ति से प्रभावित हो सकता है। मैं अपने भावों को पवित्र करता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ, और जो निमित्त आज विपरीत होकर चले गए हैं उनको जाने दो, मेरे भाव शुद्ध हो जाएंगे, मेरी जिंदगी में नए अच्छे निमित्त प्रकट हो जाएंगे और वे नए निमित्त सहयोगी बन जाएंगे। वे नए निमित्त सहयोगी के रूप में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि मैं सबका धन्यवादी हूं। जो प्रतिकूल बनकर के चला गया, मैं उसकी ओर प्रतिक्रिया करके नया प्रतिबंध नहीं करता। जो प्रतिकूल बन करके चला गया, मैं उस प्रतिकूल निमित्त के प्रतिक्रिया करके, रिएक्शन करके कोई नया प्रतिबंध नहीं करता। मैं जानता हूं कि इनको जाना है तो जाने दो, जाने दो, सब कुछ अच्छा होने वाला है, जाने दो, सब कुछ अच्छा होने वाला है। झूठा झगड़ा जग का देखा भाला है, झूठा झगड़ा जग का देखा भाला है, जाने दो, सब कुछ अच्छा होने वाला। जाना है जिसको, जाने दो। मैं अपने उपादान को शुद्ध करता हूँ, मेरा निमित्त शुद्ध हो जाएगा, और मेरे भीतर में मर्यादा है, दान है, तप है, त्याग है। अब क्या? अब मेरे भीतर कोई भय नहीं। जिसको सामायिक हुई, जिसको सही समझ आई, जिसको बोध आया, स्वाध्याय घटित हुआ, उसके भीतर कोई प्रकार का भय नहीं बचता। और जिसके भीतर भय नहीं बचे, समझना वो ज्ञानी है, बाकी सब मानी है। जय हो।